نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم قبر کا بیان اس کے ڈے 3 کا آغاز کریں گے پناہ کی دعاؤں کے ساتھ. ہم اس سیریز میں اپنے ساتھ جو چیز لے کے چل رہے ہیں وہ دعائیں ہیں, کیونکہ کچھ کام ہماری کوششوں سے ہوں گے, باقی چیزیں دعاؤں کے ذریعے لیں گے. بندہ مومن کی یہی شان ہوتی ہے کہ سٹرگل پوری کرتا ہے, کوشش پوری کرتا ہے, لیکن پھر بعد میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جو کر سکا وہ کر لیا, میں نے جو کرنا تھا کر چکی, اب باقی کمی تو اپنی رحمت سے پوری کر دیں. تو ہماری آج کی دعا بھی بہت ہی خوبصورت دعا ہے. آج ہم جن چیزوں سے پناہ مانگیں گے وہ ہے قبر کی آزمائش. بڑے شعور سے مانگنے والی دعا ہے, اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے, نماز میں بھی اکثر یہ دعا پڑھی جاتی ہے. تو آئیے ذرا میرے ساتھ دہرائیے, صحیح بخاری کی روایت ہے 6368, اللہم انی اعوذ بکا من الكسل والحرم والماسم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. بہت ہی خوبصورت دعا ہے, اور ایک ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں وہ ہے کہ جس سے مفر نہیں ہے. تو آئیے ذرا ایک ایک کا لفظی ترجمہ لیتے ہیں, آپ ساتھ ساتھ لکھیے گا. اللہم اے اللہ, انی بے شک میں, اعوذ بکا تیری پناہ میں آتی ہوں, من الکسلی سستی سے, والحرمی اور بہت زیادہ بڑھاپے سے, والماسمی اور گناہ سے, والمغرم اور قرض سے, لون یعنی قرض میں رہوں میں, وَمِن فِتْنَةِ الْقَبْرِ اور قبر کے فتنے سے, وَعَذَابِ الْقَبْرِ اور قبر کے عذاب سے, وَعَذَابِ النَّارِ اور آگ کے عذاب سے, وَمِن شَرِّ اور شر سے, فِتْنَةِ الْغِنَى دولت کے یعنی مالداری کی آزمائش سے, وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْفَقْرِ اور پناہ میں آتی ہوں تیری فقر یعنی غربت کے فتنوں سے, وَأَعُوذُ بِكَ مِن اور پناہ میں آتی ہوں تیری سے فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ مسیح دجال کے فتنے سے. اللہم اغسل اے اللہ دھو دے, انی مجھ سے, خطایا میری خطائیں یعنی مسٹیکس, بما الثلج ٹھنڈے پانی سے, جس کا برف بھی کہہ سکتے ہیں, والبرد اور اولوں سے, ونقی اور دھو دے, قلبی میرا دل, من الخطایا خطاؤں سے, यानी मेरे दिल के अंदर भी जो खताएं और जो गुनाह हैं, जो मेरे अंदर चीज़ें हैं, उससे भी इसको पाक कर दे। कमा नकई तौब अलबियदा, जैसे तूने साफ़ किया सफ़ेद कपड़े को मिनत दनस मैल से। बबाइत और दूरी डाल दे बैनी मेरे दरमियान, व बैना और दरमियान खता या मेरी खताओं के। कमा जैसे बा अत्ता तूने दूरी डाली बैनल मशरिकी मशरिक वल मगरिबी और मगरिब के। एक स्ट्रेच में पूरी दुआ को सुनते हैं और साथ आप दिल में आमीन भी कह सकते हैं। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगती हूँ सुस्ती से, बहुत ज़्यादा बुढ़ापे से, गुनाह से, कर्ज़ से और कब्र की आजमाइश से और कब्र के अजाब से और दोजख की आजमाइश से और दोजख के अजाब से और मालदारी की आजमाइश से, और तेरी पनाह मांगती हूँ या मांगता हूँ मुहताजी की आजमाइश से, और तेरी पनाह मांगता हूँ मसीह दज्जाल की आजमाइश से। ए अल्लाह, मुझसे मेरे गुनाहों को बर्फ़ और ओले के पानी से धो दे और मेरे दिल को ख़ताओं से इस तरह पाक और साफ़ कर दे जिस तरह तूने सफ़ेद कपड़े को मैल से पाक साफ़ कर दिया, और मुझ में और मेरे गुनाहों में इतनी दूरी कर दे जितनी मशरिक और मगरिब में दूरी है। क्या खूबसूरत दुआ है, एक से एक खूबसूरत चीज़। क्या सवाल लिखिए खुद से, मेरे अंदर सुस्ती है? तो दिल की गहराई से अपनी सुस्ती को सामने रखते हुए कहिए, अल्लाह मेरे दिल से सुस्ती निकाल दे। आप देखिए कि सुस्ती ही होती है जिसको बास लोग मुनाफ़िक कहने लगते हैं। फलां ऐसा है मुनाफिक है, मस्जिद में नहीं आता मुनाफिक है, क्लास में नहीं आता मुनाफिक है। नहीं, सुस्त होते हैं वो लोग। कई लोग सच्चे मोमिन भी हो सकते हैं लेकिन साथ सुस्त होते हैं। तो अपने ऊपर नज़र डालिए, क्या वाकई मैं नेकी के बहुत सारे कामों से सिर्फ अपनी सुस्ती की वजह से तो नहीं पीछे रहती? और इसकी एक अलामत है, आप अपने लिए चेक करिएगा। दिल बहुत चाहता है करने को, कर नहीं पाते। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ? हमेशा रमज़ान में हम इतनी नियतें करते हैं, हम दूसरों को कोई अच्छा काम करता देखते हैं, हम कहते हैं हम भी ऐसा करेंगे। होता कि नहीं? कोई किसी की कोई शेयरिंग शेयर कर दी जाती है, फलाह ने ये किया, क्या उस वक्त दिल में ख्वाहिश आती है अल्लाह मैं भी करूं? फिर कर क्यों नहीं पाते? सुस्ती है। तो बहुत ही खुशाइंद बात है कि आप मुनाफिक नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुनाफिक कुरान की महफिलों में नहीं बैठ सकते, सुस्ती हो सकती है। हमारे मर्द अगर 5 वक्त मस्जिदों में नहीं जा रहे तो हम फतवा नहीं दे सकते कि वो मुनाफिक हो गए हैं। अल्लाह को पता, अल्लाह के रसूल ने जो बात कही थी वो उस तक ही काफ़ी है। आपके मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए ये सहूलत है कि सुस्ती आ गई है। कुरान में आता है नमाज की तरफ नहीं आते मगर इल्लाहुम कुसाला, सुस्तियों के मारे होते हैं। तो ये सुस्ती जो होती है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। हाँ, लिखिए अब एक जुमला, सुस्ती लीड्स टू निफाक। सुस्त बंदा बिल आखिर फिर मुनाफिक बन जाता है, कब भला? सोचिए ज़रा, मैं जो जुमला बोलूँ उसको पहले ही पता हो आपको। जब दीन का तकाजा इतना बड़ा हो कि उसमें पीछे रहने की गुंजाइश ही ना हो। चलिए, कोई सूरत याद आ रही है? सूरत तौबा। तीन लोग जो बड़े बड़े सहाबी जिनके नाम अल्लाह ने मेंशन करवा दिए अपने नबी की ज़ुबान से, वो मुनाफिक नहीं थे, सुस्त हो गए थे। और आज अगर ये पॉइंट निकाला जाए तो उम्मत मुस्लिमा से अक्सरियत इसी सुस्ती का शिकार हो चुकी है, इल्ला माशाल्लाह। अच्छा चले, निफाक की वजह से नेकी से पीछे रहे या सुस्ती की वजह से रहे, फ़र्क क्या है? क्या होगा दोनों में? देखिए, महरूमी तो महरूमी होती है। आप सोते रह गए और आपकी फ़्लाइट मिस हो गई, या आप ट्रैफिक में स्ट्रक हो गए तो फ़्लाइट मिस हो गई, पेनल्टी तो गई, पेनल्टी देनी पड़ेगी। बस ज़िंदगी का एक असूल बनाइएगा, आज के बाद अपने आप को इस नज़र से देखिएगा। और आज अगर सुस्तियाँ रहीं तो असहाबुल यमीन पे आके रुक जाएंगे, साबिकून अव्वलून नहीं मिलेंगे हमें दर्जे, लिख के रख दीजिए। कभी कभी की सुस्ती सोक के अल्लाह लाड देखता है बंदे के, ये हमेशा एक्टिव होता है। आज सुस्त है फरिश्तों, जाओ इसका नाम वैसे ही लिख दो कि ये रोज़ इस वक्त मस्जिद में बैठा हो, आता है आज भी बैठा होगा। ये रोज़ इस वक्त क्लास में होती हैं, आज भी बैठी होंगी, लिख दो। कभी कभी के लाड अल्लाह बड़े देखता है, माँ बाप भी नहीं इतने देखते, लेकिन जब ये सुस्ती आदत बन जाती है तो जुर्म बन जाता है। आज उम्मत मुस्लिमा में अक्सरियत सुस्ती के जुर्म का शिकार है, जिसने फिर हमें इतना ढीला और इतना ठंडा कर दिया कि इस्लाम के ऊपर जो मर्जी मुश्किल वक्त आ जाए, हम बस अपने ज़ाती गम और खुशियों में खोए हुए हैं। तो दुआ कीजिएगा इस सारी बात को सामने रखते हुए कि अल्लाह मुझे इन सुस्तियों से बचा लेना, मैं इन सारी सुस्तियों की वजह से कहीं कल उस खूबसूरत जन्नत से महरूम ना रह जाऊँ। तो सुस्ती की वजह से जो पीछे रहेगा कयामत के दिन, उसको बड़ी हसरत होगी और उसको बहुत ही ज़्यादा अफसोस होगा। तो सुस्ती से अल्लाह ने आपको बचाने के लिए एक अलार्म लगा दिया। बाहर वाले भी सोच रहे होंगे तो नीचे कोई एक अलार्म था तो वो अब ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये सुस्ती दूर करने का अलार्म है। आज के हालात, अब मैं नाम ना भी लूँ तो भी आप समझ जाएंगे, कोरोना, लॉकडाउन, सैलाब, तूफान, ये हमारी सुस्तियाँ दूर करने के लिए आते हैं। कैसे एक्टिव हो जाते हैं? इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इन सारी चीज़ों को आप लोग इस तरीके से देखें कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ से नबी की ज़ुबान से पनाह मंगवाई है वो सुस्ती है। दैट मीन कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। फिर दूसरी बात, आप देखिए बहुत ज़्यादा बुढ़ापे से ये क्या होता है, अर्जल उम्र। जिस वक्त एक जुमला लिख लीजिए कि जीना जीना नहीं लगता, जाने को दिल नहीं कर रहा लेकिन जीने में मज़ा नहीं आता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर ऐसी चीज़ों में रहते हैं और अपने आप को कहते हैं हाय लंबी उम्र। हम अपने माँ बाप के बारे में क्या चाहते हैं? लंबी उम्र, अल्लाह इनको कुछ ना हो। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि माँ बाप से बात के पहले सब लोग अगर दुनिया में ही होते तो ये दुनिया कैसी होती, और हम उनके बारे में क्या सोचते? सोचने की बात है। वो जो मोहब्बतें हैं ना, वो सारी बेजारियों में बदल जाती हैं। आज भी सारी ज़िंदगी वो माँ बाप जिन्होंने कुछ दिया होता है, आप देखिए जब उनकी गंदगी साफ़ करनी पड़ती है, जब उनको बेबस देखना पड़ता है, तो इंसान उस वक़्त किस तरीके से, बास दफ़ा 4 बच्चे, 6 बच्चे, 10 लोग घर के, उस एक बूढ़ी माँ को नहीं देख सकते। मेट्स रख देंगे, मासियाँ रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्यों? एक माँ ने तो 10 बच्चे पाल लिए और 10 बच्चे बारियां लगा कर बैठे हुए हैं कि आज माँ को तुम ले जाओ और आज तुम ले जाओ। सोचने की बातें हैं। तो फिर अल्लाह से कहें कि अल्लाह मुझे ऐसा बुढ़ापा ना देना कि मैं अपनी ज़रूरियात भी पूरी ना कर सकूं। पर आप देखिए कि इसका उम्र से ताल्लुक़ नहीं है, यहाँ मौका नहीं है, लेकिन इशारा देती हूँ। हमारे असलाफ और आइमे कराम और मुहद्दिसीन और जो भी नेक वली लोग थे अच्छे, वो सब इस चीज़ की अमली तस्वीर थे कि जिस शख्स की ज़िंदगी में कुरान होता है, तालीम व तालुम होता है ना, उस पर अर्जल उम्र नहीं आती। 90 साल के भी आपके ख़ानदान के कोई बुज़ुर्ग ऐसे ज़रूर होंगे जो ग्लासेस भी नहीं लगाते अभी, अभी भी घोड़े की तरह वो दौड़ते हैं। ये अर्जल उम्र जो है ना, ये गुनाहों के साथ जल्दी आ जाती है। जब मेलान और रुझान, इंक्लाइनेशन, गुनाह और नाफरमानियों की तरफ ज़्यादा होती है ना, तो इंसान की आखिरी उम्र बड़ी गंदी होती है, वो इबरत की एक तस्वीर बन जाता है। इसके बरक्स नमाज, रोज़ा, तहज्जुद, तरावी, आप देखिए उन बूढ़ों के चेहरों से नज़र नहीं हटती, इतनी चमक होती है उनके चेहरों पे। तो लिहाजा अर्जल उम्र से भी पनाह मांगनी है। फिर इसके बाद देखिए गुनाह से, इस पर कुछ बोलने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। बस एक दुआ कीजिए, अल्लाह छोटे बड़े सगीरा कबीरा हर गुनाह से मुझे अपनी पनाह में ले ले। आप जब गुनाह से अल्लाह की पनाह में आएंगे ना, तो गुनाह से पहले एक ऐसे ही अलार्म बजेगा जो अभी बजा था नीचे, अब कुछ भी नहीं, सब ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान के अंदर बलिल इंसान वाला नफ्स ही बसीरा वलो अल्का माजीरा, एक अलार्म का बज जाना ये है इस बात की निशानी कि आपने अल्लाह की पनाह तलब कर ली गुनाह से। अलर्ट कॉल हो, नहीं, आप जिस चीज़ को भी चेस करते हैं आपको फीलिंग आने लग जाती है, वेट गेन हो रहा है, सांस फूल रहा है, ब्लड प्रेशर हाई है। कई लोग बैठे बैठे बगैर किसी गैजेट के कहते हैं मेरी शुगर बढ़ी हुई है, कोई कहता है गिरी हुई है, क्यों? उनको अपनी फीलिंग से दिख रहा होता है मेरे हाथ कांप रहे हैं। कई बुजुर्गों से आपने ये बातें सुनी होगी ना, तो गुनाह से एक अलार्म बजे आपके मेरे अंदर। फिर आप देखिए कर्ज से, ज़रा सा इस पे आज की उम्मत मुस्लिमा को सामने रखते हुए सोचिए, क्या अपने शौक से कर्जों में तो नहीं पड़े हुए? सिर्फ 4 दिन के बड़े घर और अच्छी चीज़ों की ख्वाहिश की मोहब्बत ने आपको मुझे कहीं मकरूज तो नहीं कर दिया? अल्लाह के नबी जिस चीज़ से पनाह मांग रहे हैं, अगर आज कोई अपने शौक़ और अपनी मोहब्बत से उस चीज़ में घुसता है तो इसमें फिर कसूर किसका है? अपनी ज़िंदगी से कर्ज को निकालिए, आपकी बीमारियों की वजह ये होगी। देखिए कई लोग हैं कहते नहीं कर्ज नहीं लेंगे तो गुजारा कैसे होगा, हालात ऐसे हैं, अब तो मियाँ में भी हिम्मत नहीं, जॉब नहीं कर पा रहे, दुकान नहीं चलती। नहीं, सॉरी टू से दैट, आपके ऊपर जो तकलीफ़ें आ रही हैं ना, ये कर्ज़ की वजह से हैं। आप पहले इस कर्ज़ से गेट रिड हो जाएं, फिर देखिए अल्लाह आपसे कैसे राज़ी होता है। कई दफ़ा हम पर बच्चों के गम, सेहत की परेशानियाँ, जिस्मानी तकलीफ़ें, परेशानियाँ सिर्फ इस वजह से आती हैं कि हमने अपने आप को कर्ज, और कर्ज़ भी फिर वो जिसमें नाफरमानी हो। सबको पता है आज का कर्ज़ किसके साथ है, आप उसका नाम इंटरेस्ट रखें ना रखें, उन्होंने तो उसको बड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए रख दिया, लेकिन अल्लाह ने उसको जो नाम दिया वो सभी को पता है, अल्लज़ीना याकुलूनर रिबा। तो लिहाजा आज यहाँ बैठकर नियत तो कीजिए। देखिए कई लोग कब्र का टॉपिक नहीं सुनना चाह रहे, पता क्यों? कब्र और सांप, कंवर और बिच्छू, लोगों का ख्याल होगा कि इस क्लास का बस क्लिक करते ही बटन इन्होंने सांपों और बिच्छुओं की तस्वीरें दिखानी शुरू कर देनी है। आपको मुझे इसका हक नहीं है, हम ऐसा कुछ भी नहीं दिखाएंगे आपको थ्रू आउट द सीरीज टिल एंड। कोई ऐसी कब्र फटती और उबलती और मसख और जले हुए चेहरों वाली तस्वीरें हम आपको इस सीरीज में दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये बड़ी जुरत की बात है। आपने देखी होंगी ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं, माँ बाप का नाफरमान, जान नहीं निकल रही थी, फलां था, फिर लोगों ने पूछा इसके साथ क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा ये नमाज नहीं पढ़ता था, ये बूढ़ी माँ को गाली देता था, और कब्र फट गई। आप एक गूगल पे क्लिक कीजिए, आपको 10 तस्वीरें मिल जाएंगी सांपों बिच्छों से भरी। आपका मेरा ये काम नहीं है, ये अल्लाह के नबी को अल्लाह ने गैब से बता दिया था कि इन दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है, और उसकी वजह भी आपने बता दी थी। आपके मेरे लिए ये बात नहीं है, आपको मुझे ये करना है। चलिए हाँ, आज के दिन को सलाम कीजिए। अपने ऊपर से कर्ज उतारने की झूठी नहीं, मकर वाली नहीं, माजरत के साथ, क्योंकि कई लोगों को मैं पिछले 15 साल से भी जानती हूँ, उस दिन भी यही कहते थे नहीं बस अब इस चीज़ से निकल जाना है, और इत्तफाकन पिछले 1-2 साल पहले फिर मुलाकात हुई, शायद 12-13-14 साल के बाद, तो सुनाइए क्या अभी भी उसी जुगाड़ में फंसे हुए। ये धोखा है, आज कब्र की रात हो तो वहां जाकर आपसे मुझसे मेरी नेकियों का तो बाद में मामला खुलेगा, पहले हमारे ये मामले खुलने लगेंगे। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने आप को परेशानियों से बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए, दुखों और तकलीफ़ों से बचाने के लिए आज इस दुआ की आड़ में नियत कर लीजिए, मैंने कर्ज़ फ्री होना है। क्या पीछे वालों को देकर जाएंगे कर्ज़? लोग खुश होते हैं, आपने 4 लाख का घर छोड़ा, आप देखिए पीछे पता चलता है 4 लाख में 1 ही लाख था, 3 लाख का तो कर्ज़ा है आपके बच्चों के नाम पे। क्या वो आपकी रूहों को सवाब देंगे? नहीं देंगे। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा मामला हो कि उसकी जान कनी जो है वो कर्ज़ की कैफियत में निकले। फिर उसके बाद देखिए कब्र की आजमाइश से जो हमारा मौजू है, ये कब्रों की आजमाइशें क्या हैं ये भी हम आगे मज़ीद सुनने वाले हैं, फिर कब्र का अज़ाब है, फिर दोजख की आजमाइश, दोजख का अज़ाब, ये 4 चीज़ें तो इस सीरीज़ में चलती ही जा रही हैं, आप सुनते ही जाएंगे। आप चाहें तो, बल्कि आप ना भी चाहें तो मैं किसी और के साथ पढ़ा लूँगी, हम इसी सीरीज़ की किताब जहन्नुम का बयान भी पढ़ेंगे, और यकीन करें इस गर्मी में पढ़ लेना तो फिर सही उसका दिल पे असर होगा, और इंशाल्लाह जन्नत भी पढ़ेंगे। मैंने तो वैसे भी पढ़ाई हुई है, आपको दोबारा भी पढ़ाने को तैयार हूँ। ईमान बिलाखिरा पूरा नहीं होता जब तक आपको कब्र और जहन्नम और जन्नत पे यकीन नहीं आ जाता, आपको हिसाब किताब का यकीन नहीं आता, तो ये सारी चीज़ें हमारे फ़ायदे की हैं। फिर आप देखिए मालदारी की आजमाइश से पनाह क्यों मांगी, ये क्या होती है? फ्लॉन्ट करना, शो ऑफ, रियाकारी, दिखावा, मेरे पास शे, मेरे पास फलां, मेरा बंगला इतने का, मेरी गाड़ी इतने की। करोड़ों के घर हैं पाकिस्तान में, करोड़ों के घर हैं, और जब लोगों की जान निकलती है ना तो यकीन करें कोई उनको रोने वाला नहीं होता, इतने वो स्टिंजी और इतने वो कह लीजिए कि क्या कहूँ कि बुरे मामलात वाले लोग होते हैं। लोगों ने पहले ही नज़रें लगाई हुई आपकी चीज़ों पे, लिख के रख दीजिए ये जाए तो सही, इसकी ये चीज़ तो मैं लूँगी, ये चीज़ तो मेरे हाथ में आएगी, ये तो अम्मा मुझे ही कह गई थी, ये चूड़ियाँ तो उसने मुझे कही थी, ये घर तो अम्मा ने वो छोटे बेटे के नाम लगा दिया था। क्या आप और मैं एक ही कल्चर के नहीं हैं? हमारे इर्द गिर्द ये नहीं होता। और मैं ऐसे बहुत करीब के मामले को जानती हूँ कि सारी ज़िंदगी अमेरिका में रहे, लेकिन जैसे हर एक को अमूमन बुढ़ापे में अपना ही मुल्क अच्छा लगता है, फैमिली अमेरिका में थी और वो पाकिस्तान में आकर अपने आबाई घर में रहने लग गए, बच्चों ने नहीं आना था वो नहीं आए, वो अकेले इधर आके रहे, अमेरिका में सारी ज़िंदगी रहे थे, पेंशन लगी हुई थी, अमेरिकन अकाउंट था, पाकिस्तान में अकाउंट रखा। उसके बाद जो भी रबते होते, किस्सा मुफसिद 5-6 साल रहे, खड़े खड़े सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते एकदम गिरे और रंग बदल गया और फौत हो गए उसी वक्त। अब जाहिर बात है कि दीन को समझने वाले लोगों को पता होता है कि जो जाता है उसकी चीज़ के साथ क्या करना है। जो भी घर वाले थे उन्होंने पता किया, घर भी उनके नाम पे था, गाड़ी भी थी और अकाउंट भी था। आप यकीन कीजिए, मैं खुद चश्मदीद गवाऊँ इस बात को, 4 साल लगे बच्चों को अपने हक लेते हुए। घर, एक बेटी बनी हुई थी, घर में आके कुछ कामकाज करती थी। वो जो ऐसे लोग होते हैं उनके बेटे बेटियां बहुत बन जाते हैं, तो वो जी ये अब्बा ने, ये तो मेरे अब्बा बन गए थे, उन्होंने कहा था ये घर तुम्हारा होगा। पता नहीं कहाँ से एक कागज़ भी लिखवा के ले आई अदालत में कि ये देखिए, और वो बाद में प्रूफ भी हो गया छूट है। अच्छा जी, बैंक अकाउंट जाके चेक किया, जाके देखा तो पता चला कि जिस दिन उनकी डेथ हुई है, एक लड़का जो पास रहता था टेक केयरर घर में, जो ऐसे लोगों ने किसी को तो रखना ही होता है ना, क्योंकि बंदे को बंदे की ज़रूरत होती है जितना मर्जी माल हो। यकीन करें, उस बच्चे ने रातों रात $25,000-$30,000 अपने नाम पे, क्योंकि उसने अपना नाम डलवा लिया हुआ था उनके अकाउंट में, एक जॉइंट अकाउंट जैसे होता है ना, गवर्नमेंट को क्या पता क्या है। उसने वो पैसे, बाप तो था भी नहीं ना, वो तो ऐसे मुंह बोले बाप और मुंह बोले बेटियों, इनकी तो कोई हैसियत नहीं। उसने वो पैसा सारा, जब वारिस गए देखने तो बैंक में नोटिस लिखा हुआ है, उन्होंने फौरन सस्पेंड करा दिया अकाउंट, लेकिन पैसे निकल चुके थे। अब उस लड़के से पूछे, अच्छा उसके बाद गाड़ी, वो गाड़ी कहता है ये तो अब्बा ने जाने से पहले मुझे, एक 2-4 दिन पहले मुझे कहा था ये तुम ही ले लो। 4 साल तक उनके शरई वारिस सिर्फ इस सोच से कि हमारे बाप पे बवाल, उनको परवाह भी नहीं थी, दीन को भी जानते थे, और जब अमेरिका में कोई बैठा है तो उनको इन 4 चीज़ों की क्या ज़रूरत होगी। उन्होंने कहा हमारे बाप पर बवाल है, क्योंकि हदीस है कि जिसने कोई ऐसी वसीयत या विरासत में कमी बेशी कर दी तो उससे पूछो होगा। 4 साल मुकदमे लड़े और क्या कुछ हुआ कि वारसों के हिस्से ये और सब बाहर के लोग खा गए। बाद में गवर्नमेंट ने दिलाया, उन्होंने कहा इनसे लेकर हम किसी और को दे देंगे लेकिन इनको नहीं देंगे। आने पाई कि 100 वाली चीज़ 10 रुपये में उनको वारसों को मिली, बाकी सब खा गए। क्या मिला उनको? अल्लाह उनके ऊपर अपनी रहमत करे। ज़िंदगी के गलत फैसले मरने के बाद भी काम आते हैं, याद रखिएगा। तो ये जो दौलत की आजमाइश ना, वो इसमें से एक आजमाइश ये है, दिल ही नहीं करता हमारा इस दौलत को अपने से दूर करने को। हालांकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु क्या कहते थे, कहते थे मैं इस दुनिया के माल की क्यों तलब करूं। अब जुमला बड़ा प्यारा है, सुनिए और लिखिए। अगर हलाल से मिला तो हिसाब का ज़रिया, और अगर हराम से मिला तो अजाब का ज़रिया। अब तो आप हिसाब और अजाब का फ़र्क समझ गए हुए हैं ना, क़यामत के बयान में बड़ी डिटेल से बात हुई थी। तो लिहाजा अल्लाह से दुआ कीजिए कि मालदारी की आजमाइशों से बचाए। पैसा नहीं है तो छोटी आजमाइश है, जिनके पास पैसा है जाके तो देखिए, और इसके साथ फिर मालदारी में आपके कितने दोस्त बन जाते हैं। रियाकारी आती है, दिखावा आता है, और मालदारी की आजमाइशें बहुत सारी हैं। आपको अल्लाह की बात ज़रा अच्छी लगती थी क्योंकि आप भी बड़े हैं, अल्लाह अकबर के साथ आप कहते हैं मैं भी अकबर हूँ। यकीन करें, आज की रात आप सुकून से सोएंगे, ठंडे दिल और दिमाग से सोएंगे, अगर आप अपना हाथ अल्लाह के हाथ में देते हैं कि ऐ मेरे मालिक, मैं तेरी मर्ज़ी के बगैर दुनिया में एक पैनी हलाल के अलावा अपने माल में नहीं आने दूंगा, और बाकी भी इसके मुतलकात जो भी हैं। फिर आप देखिए, तेरी पनाह मांगता हूँ मुख्ताजी की आजमाइश से। ये क्या है? फ़क्र गुरबत को कहते हैं, ये जो कमर के मोहरे होते हैं ना, स्पाइनल कॉर्ड, इसको फ़कूरा कहते हैं। कफवा भी होता है इसमें, यानी फ़क्र कहते हैं कमर तोड़ने वाली तकलीफ़। अमूमन इससे मुराद मनी है, यानी इतनी गुरबत ना आ जाए कि कमर ही टूट जाए। जैसे हमारे कल्चर में एक मारूफ मुहावरा है कि वह महंगाई ने कमर तोड़ दी, और हर तरह की फिर मुख्ताजी भी है इसमें, जिस्मानी मुख्ताजी। आप बिस्तर से उठकर बाथरूम में जाने के मुख्ताज हो गए, अल्लाह मुझे ऐसी मुहताजी में ना डालना। फिर इसी तरह देखिए, अगली चीज़ है मसीह दज्जाल की आजमाइश। अल्लाह के नबी की हदीस है कि हर नबी ने अपनी कौम को जिस फितने से डराया, वो दज्जाल का फितना है, और उम्मत मुस्लिमा पे सबसे बड़ा फितना जो आने वाला है वो दज्जाल का फितना है, और ग्राउंड बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। अल्लाह ने दुनिया के हालात इसी तरह से कर दिए हैं कि अब वो वक्त बहुत ही करीब है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बे क़यामत का बयान भी सीरीज़ में पढ़ी है। आजकल मैंने देखा कि बहुत सारे ग्रुप्स में हमारे हफ्ते प्लेटफॉर्म से भी गई अलामत क़यामत का बयान, उससे भी बहुत लोगों के दिल खुले, तो उसमें दज्जाल के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हैं, आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। और आखिर में तो वाकई फिर अल्लाह से लजाजत है कि अल्लाह मुझसे मेरे गुनाहों को बर्फ़ और ओले के पानी से धो दे। ऐसे नहीं लगता बंदा थक गया, हार गया है, मैं अपनी कोशिश के बावजूद भी पूरी नहीं आ रही इन चीज़ों पे, तो मेरे मालिक तू मेरी मदद फरमा, मुझे पाक कर दे पानी से, बर्फ़ से, ओलों से। और ये कितना खूबसूरत जुमला है कि मेरे दिल को ख़ताओं से पाक कर दे। جیسے سفید کپڑے کو تو میل سے پاک کرتا ہے، اب آپ ماشاءاللہ سسٹرز ہیں، کپڑے دھونا تو معمولی ہوگا نا، گندے کپڑوں کی بن ہاتھ میں ہو تو دل نہ کرے اس کو دیکھنے کو، اور دوسری طرف آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہوتا ہے، جب دھل کے خوشبو اور عطر، وہ کتنی پیاری فریگرنس ہوتی ہے اور خوشبو والے کپڑے نکلتے ہیں، وہ گیلے کپڑے سونگھنے کو دل کرتا ہے، ذرا سا اپنے آپ کو لیجئے، آپ کا دل گندا ہو گیا، کدورتیں آ گئیں، منافقت آ گئی، نفاق آ گیا، کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں، ہر ایک سے ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے اوپر اپنی رحمت پھیری، ایسے صاف کر دیا جیسے کپڑا دھلنے کے بعد صاف ہوتا ہے. آئیے دعا کریں، اللہ میرے دل کو دھو دے، اللہ میرا دل بدل دے. کسی نے مجھے سمندر کی تصویر بھیجی تو میں نے اس کے جملے میں یہی لکھا، اس کے جواب میں اللہ کی رحمت کا اظہار ہے، کیسے موجے مارتی ہوئی لہریں آتی ہیں، ایسے ہی بندے کے زندگی بھر کے گناہ، ایک دفعہ توبہ بندہ کرتا ہے اس کو سمندر کی جھاگ جتنے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. اللہ میرے آپ کے بھی گناہ معاف فرما دے. اور پھر آخری بات کہ گناہوں میں اور میرے میں اتنا فرق ڈال دے، اتنی دوری جتنی مشرق سے مغرب میں ہے. کتنا دور ہے مشرق سے مغرب؟ میپ کھول کر دنیا کا دیکھ لیجئے. اپنی خطاؤں کو سینے سے نہ لگائیے، اس کو ہٹا کر اس سے پیچھے ہو کر چلیے، کیونکہ یہ چیز آپ کو اللہ کی نظروں میں گناہگار کرتی ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب اس شعور کے ساتھ اس دعا کو مانگیں. آپ لوگ سب دعا پہ نظریں ڈال کر ایک دفعہ چپکے سے اپنے دل سے دعا کیجئے. چیزیں تو ہم نے بہت ساری دیکھی ہیں، لیکن خاص طور پہ اس میں آپ کے دل کو جو چیز چھوئی ہے نا، تو آپ ذرا اس کو مانگیے. میں چند سیکنڈ خاموش رہوں گی اس لیے کہ آپ لوگ فوکس ہو کے اپنے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. دیکھیے 11 چیزوں سے ہم نے پناہ مانگی ہے، اور اس کے بعد پھر دھونے دھلانے کی باتیں بھی ہوئیں. اللہ تعالیٰ علم کی اس محفل میں ہماری یہ دعائیں قبول فرمائے.